Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050, and 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Vinay Saxena.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश की खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ राजीव रंजन। राजीव जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
वार्म वेलकम राजीव।
नमस्कार।
और पहले हेडलाइंस के साथ श्रोताओं, राजेश लेख।
डोमेस्टिक मार्केट स्नैप टू वीक्स ऑफ लूजिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी राइज अबाउट 1.6%। India's gross direct tax collections rise nearly 5% so far in the current financial year. And at the Wall Street, the US markets fall in a choppy trade.
दो हफ्ते की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी इस हफ्ते लगभग 1.6% बढ़कर बंद हुए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर लगभग 5% रहा और अमरीकी शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ा, कारोबार जारी रहा। दो हफ्ते की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए घरेलू सूचकांक इस हफ्ते 1.6% बढ़कर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक में 1290 अंकों की बढ़ोतरी हुई, जो बढ़कर 82,408 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 394 अंकों की बढ़त रही और वो 25,112 पर बंद हुआ। यदि हम बाजार में बीएससी के मिड कैप इंडेक्स को देखें तो उसमें 0.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 2% की गिरावट रही। राजीव जी, सेंसेक्स का बढ़ना दो हफ्ते के बाद क्या संकेत देता है कि वैश्विक परिस्थितियों का हम पर कोई असर नहीं आ रहा या हमारी अर्थव्यवस्था को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता या एक ये छलावा है?
नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था,
क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप तो चले गए नीचे।
बिल्कुल, देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था हो या जियोपॉलिटिक्स हो, इन सब का हमारी मतलब कारोबारी स्थितियों पे, बाजार पे काफ़ी असर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। और इसीलिए देखिए, जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी और उसके बाद बाजार में एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद अचानक हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, खास करके इसराइल और ईरान के बीच जिस तरह से संघर्ष शुरू हुआ, तो उसके चलते भारतीय बाजार थम गया। अभी शुक्रवार को आप पिछले पूरे हफ्ते की जितनी तेजी आप देख रहे हैं वो मुख्यतः शुक्रवार की एक दिन की तेजी है, उससे पहले पूरा हफ्ता लगभग एक ही स्तरों के आसपास ही रहा है।
छलावा ही माने?
नहीं, छलावा कहना ठीक नहीं है, जैसे स्थितियां होती है मार्केट रिएक्ट करता है। तो शुक्रवार को क्या हुआ, आपने देखा कि अमेरिका के तरफ से ऐसे कुछ बयान आए जिनसे लगा कि हाँ, जो एकदम से लग रहा था कि हाँ अमेरिका अब इस युद्ध में कूदने ही वाला है, उसके बदले दो हफ्ते की आपको एक मोहलत मिली, तो वो एक मार्केट के लिए रिलीफ वाली बात थी कि चलिए ठीक है, अभी इसराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष हो रहा था, लेकिन अमेरिका तुरंत इसमें अभी नहीं कूदने जा रहा है। तो ये उस रिलीफ के चलते आपको शुक्रवार को बाजार में एक तेजी देखने को मिली है। अगर आगे नए हफ्ते में ये लगता है कि ठीक है, ये कहीं बातचीत की टेबल पर दोनों वापस आते हुए दिख रहे हैं, तो आपको बाजार की तेजी आगे बढ़ती दिखेगी। अगर ये लगा कि नहीं ये संघर्ष और तेज हो रहा है, जिसमें अगर अमेरिका न भी कूदे लेकिन ईरान और इसराइल ही आपस में काफी ज्यादा तेजी से संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप बाजार को वापस डोलरम में पाएंगे, और अगर कहीं उससे आगे स्थितियां बिगड़ी तब तो फिर कुछ कहा ही नहीं।
श्रोताओं के लिए क्या सलाह है अगले हफ्ते के लिए?
We will take a pause on that and go towards two callers, one from Maharashtra and the other one from Gurgaon. First, we go to Ashutosh from Gurgaon. A warm welcome, Ashutosh.
Good evening, Market Mantra team.
Good evening.
Sir, मेरा सवाल है banking sector के लिए. जी. मेरे पास कुछ share मैंने invest कर रखे हैं equity के अंदर banking sector में. तो अभी जैसे रेपो रेट भी डाउन हुआ है, तो गोइंग फॉरवर्ड उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है बैंकिंग सेक्टर पे? अभी जो डिस्टेबिलिटी है जियोपॉलिटिक्स की वजह से, तो अभी तो प्राइस स्टेबल है, और मेरा जो अभी प्राइस है बाइंग प्राइस वो बराबर ही है, मतलब जो बाइंग प्राइस है और अभी जो मार्केट प्राइस है तो वो बराबर ही है, तो क्या मुझे अभी बने रहना चाहिए बाजार में या उससे बाहर निकल लेना चाहिए?
जी देखिए, आपकी चिंता स्वाभाविक है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो बाजार पे सीधा एक नकारात्मक असर डाल रही हैं। अगर ये असर नहीं हुआ होता तो फिर आज आप जो कह रहे हैं कि बाइंग प्राइस पे ही आप बैठे हुए हैं, उसके थोड़ा बेहतर स्थिति में आप ज़रूर होते, मुझे ऐसा लगता है। बैंकिंग क्षेत्र आने वाले समय में अच्छा रहेगा, उसके सामने ये जो बाहरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उसके अलावा बाकी जो भी स्थितियाँ हैं अभी फिलहाल मोटे तौर पर अच्छी लग रही हैं। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था वापस संभलती हुई दिख रही है, अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई कहें, और मॉनसून अच्छी तरह से बढ़ रहा है, कंजम्पशन सेक्टर को अच्छा एक बूस्ट इस साल मिलने की उम्मीद की जा रही है, जिसका एक फ़ायदा आपको बैंकिंग सेक्टर में और लेंडिंग प्रोसेस में आपको देखने को मिल सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आप अच्छी उम्मीदें रखें, लेकिन हाँ जियोपॉलिटिक्स अगर हावी होती है तो उसका असर तो रहेगा, सारे ही सेक्टर्स पर रहेगा।
हमारे अगले कॉलर महाराष्ट्र से हैं, आलोक अपना सवाल पूछें।
हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग
सर, मेरा सवाल एक है, ये एक मेरे पास में एक कॉल आया था और उन्होंने बताया कि हम फिनाडेक्सा से बात कर रहे हैं, फिनाडेक्सा। मैंने उनका वेबसाइट पूछा, उन्होंने अपना बताया वेबसाइट फिनाडेक्सा करके है, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे कुछ मिनिमम 21,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है और वो पैसा बढ़ता है, ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा फिनाडेक्सा, ये हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि?
आलोक जी, कोई भी पैसा किसी को भी देते समय याद रखिए आप सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं आप उनसे सलाह लेकर के आप बाजार में निवेश करें, और ये जो आपसे कहते हैं कि आप मिनिमम इतना पैसा जमा कर दीजिए, ये सब खतरे की घंटी है, इस बात को आप समझ लीजिए।
नहीं राजीव, एक थम रूल है ना, जो इतनी आसानी से आपको कहे कि 21,000 डालो और आपको लाखों रुपए मिलेगा,
इन मोस्ट प्रोबेबल केस, हालांकि स्पेसिफिक नेम के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह के कॉल जब भी आते हैं तो उसमें आपके लिए एक ट्रैप होता है,
वो छलावा है।
राजीव जी, जब भी इतनी एडवर्टाइजमेंट और इतने प्रचार के बावजूद भी अगर हमारे निवेशक इस तरह की कॉल्स पे भरोसा कर रहे हैं तो ये मतलब बहुत दुखद बात है।
नहीं, मुझे लगता है उन्होंने भरोसा नहीं किया, इसलिए पूछना ठीक समझा।
सरकार पूरी तरह से इसका प्रचार कर रही है कि इस तरह के किसी भी लिंक को, कॉल को, एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल विश्वास न करें, उसके बाद भी अगर ऐसा है तो
देखिए, बहुत सारे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपको एक एश्योर्ड प्रॉफिट का भरोसा दे करके बाजार में खींचने की कोशिश करते हैं, और बाजार में क्या, वो अपने पाले में या अपने जाल में खींचने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, शेयर बाजार में कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं होता है। कोई भी अगर आपसे कहता है कि भाई हमारी 99% एक्यूरेसी होती है, हमारी 90% एक्यूरेसी होती है, ऐसे लोग जितने भी वादा करते हैं उन पर कतई भरोसा न करें आप।
शंकर फ्रॉम भोपाल जॉइन दिस नाउ। शंकर, वार्म वेलकम। शंकर, कैन यू हियर?
हेलो, नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम।
जी, सवाल पूछे।
सर, मेरा सवाल है, ये जो पावर सेक्टर है, कई सालों से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बिजली का तो ज्यादा होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्किंग में बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे बिजली जाती रहती हैं, तो किस सेक्टर के हमें पैसा ध्यान देना चाहिए, मतलब एज एन इन्वेस्टर, ट्रांसफार्मर मेकिंग कंपनी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या एनी अदर पर्टिकुलर सेक्टर? बिकॉज आई बिलीव विदाउट पावर कुछ नहीं होने वाला, तो पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी देखिए, पावर सेक्टर इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उनका जिक्र आपने खुद ही किया है, तो इसके चलते ये काफ़ी अनसर्टेन रहता है। मतलब हम अक्सर ये बात करते हैं कि भारत को बिजली की बहुत ज़रूरत है और अगर देश की तरक्की होनी है तो इस क्षेत्र को काफ़ी आगे बढ़ना होगा और रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे सामने। कंपनियां आगे बढ़ती भी हैं, पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी काफ़ी अच्छी बढ़ी है, लेकिन क्या उस हिसाब से आपको शेयर बाजार में ये सेक्टर उतना रिटर्न दे पाता है? तो वहाँ पर काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। एक भरोसेमंद निवेश आज की तारीख में मैं बहुत आश्वस्त होकर के नहीं कहूँगा कि हाँ पावर सेक्टर में पैसा लगा लीजिए। आप वॉचफुल रहिए, आप ट्रेंड्स को देखते रहिए। कंपनी स्पेसिफिक इसमें बहुत वेरिएशंस आते हैं, एक ही सेक्टर की दो अलग कंपनियां काफ़ी अलग वैल्यूएशन पे चलती हैं और उनके मतलब मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशंस जो हैं वो काफ़ी अलग तरह के रहते हैं। आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा, सीधे सीधे एक थम रूल नहीं हो सकता कि पावर सेक्टर है सनराइज सेक्टर है तो आप इसमें एकदम कहीं भी आंख मूंद करके पैसा लगा लीजिए, वैसा नहीं चलेगा।
रत्नाकर जी नमस्कार, सवाल पूछे अपना। हेलो रत्नाकर जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए हम अपने अगले श्रोता को लेते हैं। जय कुमार जी सवाल पूछे अपना।
मार्केट मंथन टीम को मेरा नमस्कार और एडवांस में धन्यवाद जी। मेरा बेटा एनआरआई है और वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन टैक्सेशन का उसे कुछ आइडिया नहीं है, तो क्या कुछ गाइड करेंगे
जी? तमाम ब्रोकिंग फर्म्स के पास एनआरआई के अपने डेस्क होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको इस बारे में अच्छी तरह से राय देंगे। आमतौर पे मतलब जो टैक्सेशन के लिए एनआरआईज के लिए थोड़े से अलग प्रोविजंस रहते हैं, आपको उन्हें देखना समझना जरूरी होगा।
फ्रॉम कोलकाता वी आर जॉइंड इन बाय अनुराधा, वार्म वेलकम अनुराधा।
जी नमस्कार।
नमस्कार
जी। देखिए मैं जानना चाहती हूँ, मैंने नेट पे देखा था और फेसबुक वगैरह में, तो मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया था। ये होता है कुछ होटल रिजॉर्ट्स वगैरह में शेयर में, मतलब आपको वो कहते हैं कि आपको मालिकाना दिया जाएगा और आप 7 लाख या 8 लाख या 10 लाख इस तरह से उनके स्लैब्स रहते हैं। आपने एक बार में इन्वेस्ट किया और वो साल दर साल शायद क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स और 3 क्वार्टर्स में आपको सालाना आपको 8-10 हजार, मतलब 9% वो बोल रहे हैं कि एकदम एश्योरेंस दे रहे हैं 9%, उससे ज्यादा भी हो सकता है कि वो आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो ये उन्होंने जो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने जो भी उन्होंने भेजा था और मैंने नेट पे खुद भी कुछ सर्च किया, तो ये फ्रैक्शन कहते हैं कि इसको फ्रैक्शन ओनरशिप, आप जब चाहे तो उसको बेच भी सकते हो
जी। देखिए इस तरह के बिजनेस मॉडल में, इस तरह के काम में कई अच्छी कंपनियां, प्रतिष्ठित कंपनियां भी हैं जिनमें कुछ शेयर बाज़ार में लिस्टेड भी हैं, लेकिन उसकी देखा देखी बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ ऐसे किसी निवेश के बारे में सोचना चाहिए और इसको आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरह से ही लेकर के चलिएगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 4.86% हो गया है, जो कि लगभग 5,45,000 करोड़ रुपए का हो गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 5,19,000 करोड़ रुपए था। हालांकि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1.39% की मामूली गिरावट देखी गई, जो कि 4,58,000 करोड़ रुपए है। यह गिरावट 58% से अधिक रिफंड बढ़ जाने के कारण हुई है, जो ये दर्शाता है कि फाइल की गई आयकर विवरणियों की प्रोसेसिंग और करदाता से जुड़ी हुई सेवाओं में सुधार हुआ है। आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अग्रिम कर संग्रह 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो 0.387% की वृद्धि को दर्शाता है। इस कारण कॉरपोरेट अग्रिम कर भुगतान में 5.86% की वृद्धि रही, जबकि गैर कॉरपोरेट करदाताओं से कर संग्रह में 2.68% की गिरावट आई। अब हमारे कॉलर रत्नाकर अपना सवाल पूछे, मुंबई से रत्नाकर जी। रत्नाकर जी सवाल पूछे।
मेरा सवाल है प्रॉफिट के बारे में, वो जो बुक प्रॉफिट एंड रियल प्रॉफिट में क्या फर्क है, और दूसरा है कि वो जो प्रॉफिट जो रियलाइज प्रॉफिट हम करेंगे वो 26AS में रिफ्लेक्ट होता है क्या, वो है? और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में क्या मीनिंग है? थैंक यू
जी। देखिए आपने जो भी निवेश कर रखा है उसकी एक मार्केट प्राइस थी, आपकी खरीदने की एक प्राइस थी और आज की डेट में उसकी एक मार्केट प्राइस है, तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है, मान लीजिए वो शेयर आपके पास है लेकिन उसकी मार्केट प्राइस आज की तारीख में मान लीजिए आपने खरीदा था 100 रुपए में और आज की तारीख में उसका भाव 110 रुपए है, तो 10 रुपए जो है वो आपका एक मतलब इस समय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है या जिसको आप बुक प्रॉफिट कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप आज की तारीख में उसे 110 रुपए में बेच लें तो ये 10 रुपए आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो आपके किसी भी 26AS वगैरह में नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको ब्रोकर के स्टेटमेंट में नजर आएगा जहां आपका ब्रोकिंग अकाउंट है। अगर आप वहां पे लॉगिन करेंगे या रिपोर्ट देखेंगे वहां आपको अपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स भी दिखेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक तरह से किताबी है जैसा आप कह रहे हैं बुक प्रॉफिट है। रियलाइज्ड होने के बाद वो ऑब्वियसली अगले आपके 26AS रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी चीज कि आपने पूछा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो अगर 12 महीने से कम के समय में आप कोई शेयर बेच लेते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा। अगर 12 महीने से अधिक समय के बाद आप बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट है तो वो आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा।
सो राजीव, नेक्स्ट वीक विल बी अप फॉर सम इंटेंस एक्शन बिकॉज वी हैव 13 IPOs हिटिंग द दलाल स्ट्रीट। द कंपनीज विल बी रेजिंग नियरली 16,000 crore ड्यूरिंग द वीक। So what's your expectations? Is this a good time to invest in IPOs? Or what is it that you expect from the market in the coming week?
देखिए, IPO में निवेश करने का समय अच्छा या खराब नहीं होता है। कोई IPO आपके लिए अच्छा है या नहीं है ये आपको चुनना होता है, और वो अच्छे समय में भी अच्छे IPO आ सकते हैं और खराब समय में भी अच्छे IPO आ सकते हैं। आमतौर पे जब बाजार ऊंचे स्तरों पर होता है तो उसमें कई बार ये होता है कि इस तरह की भीड़ दिखती है, वैसे समय में आपको ज्यादा सावधानी के साथ ज्यादा सतर्क होकर के चुनाव करना चाहिए। हालांकि इन दिनों मैं देख रहा हूं कि काफी हद तक भले ही छोटी कंपनियां हों लेकिन उनके पास एक लंबी हिस्ट्री होती है, एक मैनेजमेंट है जिसके पास अपना डोमेन एक्सपर्टीज होता है, इस तरह के काफी छोटे IPO भी आ रहे हैं। लेकिन किसी भी IPO में निवेश करने से पहले आपको एक तो उसका आगे का पोटेंशियल कैसा है उस सेक्टर का और उस पर्टिकुलर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो सब कुछ तो देखना होता है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है वो आपको देखना समझना होता है, और साथ में वैल्यूएशन वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब बाजार तेज होता है, अभी देखिए आप निफ्टी 22,000 के आसपास से लगभग 25,000 पे पहुंच चुका है, तो यहां पर आपको IPO की भरमार वापस दिखने लगी। जब 22,000-23,000 के बीच में था तो IPO का बाजार एकदम से सूखा हो गया था फिर से वापस, तो ये बात समझनी होगी। बाजार जैसे ही चढ़ता है तो IPO की कतार लग जाती है, आपको चुनाव बहुत सावधानी से करना है।
So which sectors are we expected to see these IPOs in and which are the sectors that you are quite gung-ho about?
देखिए, जब बाजार तेज होता है तो हर सेक्टर के IPO आते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं होगा।
क्या ग्रे मार्केट प्राइस भी कोई रोल प्ले करता है निवेशकों के लिए कि और वो शेयर्स का डिसाइड करता है कि ये शेयर अच्छा है या IPO अच्छा है या नहीं है?
ग्रे मार्केट प्रीमियम एक रोल प्ले करता है निवेशकों को भरमाने में,
तो निवेशकों को उनके छलावे में आना चाहिए?
बिल्कुल नहीं
जी। अभी मे बी रिमाइंड आवर लिसनर्स दैट वी आर टेकिंग कॉल्स लाइव फ्रॉम यू। यू कैन कॉल अस इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग बिजनेस, इकोनॉमिक एंड स्टॉक मार्केट मैटर्स। द नंबर्स आर 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. From Delhi, we are now joined in by Jay Kishan. A warm welcome, Jay. Hello. Jay, apna sawal puche.
Hello.
Ji, sawal puche.
Ji, hello.
Ji, ji, bole. Hum sun
Jay Kishan ji, aapki awaaz aa rahi hai, apna sawal puche.
Ji, namaskar. Mere teen question hai. Pehla question ye hai ki जो 12 लाख की इनकम छूट है कि जो 12 लाख तक का जिसकी इनकम है उसको छूट मिलेगी, तो क्या जो विकलांग लोग हैं, नेत्रहीन हैं, क्या उनको 12 लाख के बाद कोई इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा? नंबर मिलेगा तो कितना मिलेगा? दूसरा, जो होम लोन अगर कोई विकलांग लेता है तो क्या उसके लिए ब्याज में कोई अलग से छूट है? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिसकी उम्र 75 साल से अधिक है, महिला की या पुरुष की, 80 साल के करीब है, तो क्या उसके लिए कोई अलग से छूट है या नहीं है? भाई, मेरे तीन क्वेश्चन है सर।
जी देखिए, अब 12 लाख की छूट जो है वो नए टैक्स रिजीम में है, और इसमें आप जितने अलग से एक स्पेसिफिक कंडीशन को लेकर के छूट की बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी में ऐसी अलग छूट आपको नहीं मिलेगी। वो उस तरह की छूट अगर कहीं पर आपको मिलती है तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, लेकिन वहां पर फिर 12 लाख की सीमा नहीं पूरी होगी। जी
केशव जी, अपना सवाल पूछें। नमस्कार।
नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हेलो
आवाज आ रही है आपकी?
हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अब जो गाड़ियाँ हमारी हमने परचेज कर रखी है बंद हो जाएंगी 15 साल की, और अब नई गाड़ियाँ सुनने में आ रहा है कि फरवरी 26 से नई गाड़ियाँ भी मार्केट में लॉन्च होंगी, बंद हो जाएंगी टू व्हीलर। तो ऐसे में जो गाड़ियाँ चलेगी वो तो 15 साल की बजाय उनको 10 साल का पीरियड दिया जा रहा है, ये क्या सही बात है? और दूसरा सवाल, जो सारी बैटरियों की गाड़ियाँ ही मार्केट में आ जाएंगी, तो बैटरियाँ अगर खराब होती हैं तो फिर उसको डंपिंग करना भी बड़ा मुश्किल की बात है, ये है, ये कहाँ सब होने की चांसेस है?
जी काफी उलझने हैं इनके मन में, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मार्केट से जुड़ा सवाल नहीं है।
जी प्रवीण जी, अपना सवाल पूछें, दिल्ली से। प्रवीण जी
नमस्कार सर, माय क्वेश्चन इज, समवन हैज टेकन होम लोन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड इफ ही इज विलिंग टू सेल दैट प्रॉपर्टी इन द सेम ईयर एंड ही वांट्स टू बाय द अदर प्रॉपर्टी, कैन ही स्वैप द लोन?
देखिए, लोन स्वैप करने का जहां तक मामला है, इसके लिए तो आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी। जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए।
मूविंग ऑन, द यूएस मार्केट्स फेल यस्टरडे आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेल्ड बैक फ्रॉम इमीडिएट मिलिट्री एक्शन इन द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। The S&P 500 lost 13 points or 0.2% to close at 5,968 yesterday. The Nasdaq Composite shed 99 points or 0.5% to 19,447. However, the Dow Jones Industrial Average rose 38 points or 0.1% to 42,210. The U.S. imposed Iran-related sanctions a day after Trump said he might take 2 weeks to decide on further action. The new sanctions target entities, individuals, and vessels providing Iran with defense machinery and were seen as a sign of a diplomatic approach from the Trump administration. European foreign ministers urged Iran to engage with the U.S. over its nuclear program after high-level talks in Geneva about a potential new nuclear deal ended with little sign of progress. Federal Reserve policymakers made their first public comments since Chair Jeremy Powell said on Wednesday that borrowing costs were likely to fall this year, but that he expects meaningful inflation ahead as Trump's tariffs raise prices for consumers. Now, even the Fed is now asking questions about the Trump tariffs. What are our expectations going forward? Are the tariff issue on hold, or it can crop up anytime again?
See, even the US markets are worried about the Trump tariffs because they simply expect that if these higher tariffs are imposed, the immediate impact would be on the US inflation itself. The US consumers will pay the extra tariff, not the countries that are exporting to US. So ultimately, the US consumers have to pay that price. So as of now, we can see these tariffs only as a bargaining tool.
So the fear of inflation still looms large.
Exactly. And that's why the US will have to settle for lower tariffs. They're using it only as a bargaining tool.
Okay. We have Muni Yadav from Guru Gram with us. A warm welcome. I aapse request hai ki apna radio ki volume kam kar dein, please.
Hello.
Haan ji.
Sir, mera ek question hai. Kya hum, matlab antarrashtriya star par koi pariyatan hue hain ki American dollar ko antarrashtriya mudra से हटाकर कोई दूसरी मुद्रा उसमें उससे ट्रेड किया जाए?
जी देखिए, डी डॉलराइजेशन की बातें काफी समय से हो रही हैं, लेकिन आज की तारीख में भी डॉलर का कोई एक स्पष्ट विकल्प हमारे सामने नहीं है। तो आगे कौन सी मुद्रा इसका स्थान ले पाएगी, बहुत सारे विकल्पों के बारे में जब चर्चा होती है तो हमें ये देखना होता है कि अच्छा ठीक है, क्या डॉलर के मुकाबले वो विकल्प हमारे लिए बेहतर होगा भारत के लिए। बहुत सारे सवाल हैं इस बारे में, मतलब डॉलर अगर एक फिएट करेंसी की तरह से है और सारी दुनिया में एक उसका इस्तेमाल हो रहा है तो उसके हमारे लिए अपने फ़ायदे नुकसान हैं, और दूसरे विकल्पों के बारे में अगर कोई चर्चा होती है तो उस चर्चा में हमें हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन दूसरा विकल्प क्या उभर रहा है और क्या वो विकल्प हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये हमेशा एक सवाल बना रहेगा और इसीलिए अभी तुरंत कोई आसान हमारे सामने रास्ता नहीं है।
टिंकू जी अपना सवाल पूछें बिहार से। टिंकू जी सवाल पूछें, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
नमस्ते सर,
पूछिए सवाल।
मेरा उम्र 42 हो गया, ठीक है
जी,
और मेरा दो सवाल है सर जी। एक सवाल है ये कि पीपीएस अकाउंट जो है कितनी उम्र में किया जाता, और एक दूसरा सवाल है जो पेंशन योजना करवाना चाहते हैं तो कितने का उसका जमा डिपोजिट करना पड़ेगा, यही सवाल है सर
जी। पीपीएफ की एग्जैक्टली शायद हायर जो एज लिमिट है 58 या 60 है। तो अभी तो बहुत अच्छी उनकी उम्र पड़ी हुई है, बहुत आराम से वो उसमें निवेश कर सकते हैं।
फ्रॉम चेन्नई वी आर जॉइंड बाय भारत, वार्म वेलकम भारत।
या गुड इवनिंग एवरीवन।
गुड इवनिंग।
सो आई हैव क्वेश्चन अबाउट इन्वेस्टमेंट लाइक पेंशन वर्सेस यूलिप। सो आई सी मेनी कंपनीज एडवर्टाइजिंग यूलिप प्लान्स एज अ गुड ऑप्शन फॉर पेंशन, but I also hear from some financial advisors that it's better to have a combination of term life insurance and balanced mutual funds. Can I have your opinion, please?
जी देखिए, ये हमेशा एक विकल्प है कि आप यूलिप के बदले, क्योंकि यूलिप में क्या होता है आपको बहुत एक क्लैरिटी नहीं होती कि आपका कितना पैसा जो है वो आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देने में जा रहा है, कितना पैसा आपका एक्चुअली इन्वेस्ट हो रहा है, जो इन्वेस्ट हो रहा है उस पर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, उसमें काफ़ी कुछ एक तरह से कहें कि खिचड़ी बनी हुई होती है। उसके बदले अगर आप सीधे अलाकार्टा तरीके से अगर आप अपने लिए एक टर्म प्लान ले लेते हैं जिसमें आपके लिए एक डिज़ायर्ड जो आप सोचते हैं कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन होती है उसके लिए, तो वहाँ पर आपके सामने ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट के लिए बचा पैसा है, टर्म प्लान आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा कंपेयर अगर आप करें यूलिप से, तो आप यूलिप में जितना पैसा डालेंगे उससे बहुत कम पैसे में आप टर्म प्लान में अपनी फैमिली को एक हायर प्रोटेक्शन दे पाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। और जो बाकी पैसा बचा उसको अगर आप अपने तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आप अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने फाइनेंशियल गोल्स, इन सब को देखते समझते हुए आप शायद बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे, ये राय बिल्कुल ठीक है।
सुभाषिनी अपना सवाल पूछें।
हाँ नमस्ते, तो आई हैव दिस क्वेश्चन ऑन 54F सेक्शन। So, मेरा ये सवाल है कि I went into a construction agreement in 2023 and I sold my mutual funds, and based on that I had some loss from capital gains tax.
Please be specific.
But I had taken an exemption because ये घर जो खरीदा है उसके लिए।
Subhashini, we are sorry.
That house was not handed over. My question is, can I purchase a house? I'm not going to enter a construction agreement, but can I purchase a house?
Sorry, I couldn't get her question.
Due to paucity of time, we couldn't actually take her call fully. And also, she was not very clear as to what she wanted us to answer. In the meantime, we would like to thank you for being with us, Rajiv.
You.
And we would also like to thank our listeners for taking part in today's program wholeheartedly. And before we close, the headlines once again. Domestic markets snap 2 weeks of losing streak. Sensex and Nifty rise about 1.6%. India's gross direct tax collections rise nearly 5% so far in the current financial year. And at the Wall Street, the US markets fall in a choppy trade. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.